सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
आरोग्य वाणी के आज के अंक में हम आपको सुनवा रहे हैं डायबिटीज के बारे में विस्तार से जानकारी डॉक्टर सुजान अग्रवाल से, जिनसे बातचीत कर रही हैं संगीता अग्रवाल।
अर्पा कम्युनिटी रेडियो के सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज बात करते हैं डॉक्टर से मधुमेह रोग के बारे में। मिठाई को देखकर मन कहता है चलो चलो खा लें, और दिमाग कहता है ए दिल संभल जा जरा। साथियों, क्या आप जानते हैं दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज के मामले हमारे स्वास्थ्य संगठनों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। 14 नवंबर विश्व डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आंकड़ों की यदि हम माने तो दुनिया भर में 42 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज के शिकार हैं। और क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है? जी हाँ, हमारे भारत में ही है। भारत में हर साल डायबिटीज के लाखों नए मामलों का निदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार जीवन शैली और आहार में गड़बड़ी के कारण डायबिटीज के मामले सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। इसके अलावा आनुवांशिक जीन मेडिकल कंडीशन भी इस गंभीर समस्या का कारण बन गए हैं।
एकदम सही बोल रहे हैं, और हम लोगों के अनुसार जीवन शैली और आहार में गड़बड़ी ही डायबिटीज के सबसे ज्यादा कारण माने जाते हैं। इसके अलावा अनुवांशिकता माने जेनेटिक जीन्स और मेडिकल कंडीशन भी एक गंभीर समस्या का कारण है। दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है।
तो इस समय आप ये बताइए कि डायबिटीज क्या है?
डायबिटीज तो अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं। खून में शुगर की मात्रा एक सीमा से ज्यादा हो जाती है। मधुमेह का मैंने शुगर की जो मात्रा है खून में कि बिना कुछ खाए शुगर की मात्रा 126 मिलीग्राम प्रति डीएल माने प्रति 100 एमएल से ज्यादा हो, और दिन में कभी भी शुगर जांच कराने पर 200 एमएल से ज्यादा यानी कि इसको रैंडम ग्लूकोज बोलते हैं, और ग्लूकोज पीने के 2 घंटे के बाद शुगर की मात्रा यदि 200 मिलीग्राम प्रति डीएल से ज्यादा है तो उसे डायबिटीज कहते हैं। डेसीलीटर माने 100 एमएल यानी कि खाली पेट में 126, कभी भी आप दिन में जांच कराएं रैंडम 200 एमएल 200 मिलीग्राम, और ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद शुगर की मात्रा 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यदि है तो उसको डायबिटीज हम लोग लेबल करते हैं।
ये क्या डॉक्टर साहब डायबिटीज के भी प्रकार होते हैं?
हाँ, डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः। एक तो वो बच्चों में होती है उसे टाइप 1 डायबिटीज या जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। जुवेनाइल है ना बच्चे, 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में बच्चे को ज्यादा पेशाब आता है, भूख कम लगती है, वजन कम होता है। ज्यादातर ज्यादा भूख लगने के बावजूद वजन कम होना तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, और खासकर तब सोचना चाहिए जब माँ बाप भी डायबिटीज के शिकार हैं। तो कहे पहले से किसी को टाइप 1 डायबिटीज है या कोई अनुवांशिक प्रवृत्ति है तो डायबिटीज का जो पहला प्रकार है उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके अलावा जो जुवेनाइल डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज है वो वायरल इन्फेक्शन हो जाने से भी होता है। दूसरे टाइप का जो डायबिटीज है वो यूजुअली एडल्ट एज ग्रुप में होता है यानी कि 35 साल के बाद या बुजुर्गों को होता है। ज्यादातर जिनको टाइप 2 डायबिटीज होता है वो थोड़ा सा वेट में ज्यादा रहते हैं, और दुख की बात तो यह है कि 50% मरीजों में इसके लक्षण नहीं दिखते हैं, और इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, या इसको मैं बोलूंगा साइलेंट डिजीज है। क्योंकि लक्षण नहीं होते हैं इसलिए मरीज जांच भी नहीं कराता है। तो मैं तो आपको यह सलाह दूंगा कि 45 साल के बाद हर साल डायबिटीज की जरूर जांच कराएं।
तो क्या हमको मीठा खाने से परहेज करना चाहिए, या मीठा खाने से होता है डायबिटीज?
मीठा खाने से डायबिटीज तो नहीं होता है, क्योंकि डायबिटीज का कारण खाली मीठा खाना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया अनुवांशिकता है, इन्फेक्शन है, या फादर मदर में डायबिटीज यदि है तो बच्चों में ज्यादा होने की चांसेस होते हैं। मीठा जो है वो डायबिटिक को खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि उसमें शुगर और भी ज्यादा बढ़ने का चांस।
इसके अलावा डायबिटीज से और भी समस्याएं होती है, हम ये कैसे घर पे कैसे जाने कि हमको है डायबिटीज। जैसे कि आपने बताया कि 50% लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें डायबिटीज है।
आपको जो जानने के लिए डॉक्टर जैसा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन बार बार पेशाब आ रही हो, बहुत भूख लग रही हो, बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, रात को उठ उठ के पानी पीना या रात को उठ उठ के पेशाब जाने की जरूरत पड़े, तो फादर मदर के उसमें से एक या दोनों डायबिटिक हो, तो आपको थोड़ा सा इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता का केवल ये जरूरत है कि आप चिकित्सक से सलाह लें, खुद को यह ना मानते चले कि मेरे को डायबिटीज हो गया है, और काउंटर पर जाकर दवा मत लीजिए अपनी इच्छा से। डॉक्टर आपको निर्धारित करेगा कि सचमुच में वो डायबिटीज है कि नहीं है।
बहुत अच्छी बात बताई आपने। और डायबिटीज के दौरान डॉक्टर साहब हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
वही सबसे पहले अपन ने बात करी कि ज्यादा मीठा नहीं खाना है, वेट यदि बढ़ रहा है तो वेट के बारे में आपको सतर्क रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर के पास जाने की इसलिए जरूरत है कि डायबिटीज का इलाज फिक्स नहीं है, हर एक मरीज के लिए लक्षण के अनुसार, उसके शरीर के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार की दवा दी जाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, दवाओं का भी और उनसे डायबिटीज से संबंधित सलाहों का भी।
और डायबिटीज होने के बाद हमको शुगर लेवल हमेशा चेक करते रहना चाहिए, तो ये शुगर लेवल कितना होना चाहिए?
हाँ, डायबिटीज में बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मरीज को भी थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए डायबिटीज के बारे में। इसलिए हम लोग ये डिस्कशन आज का कर रहे हैं कि डायबिटीज के बाद बिना कुछ खाए पिए यानी कि फास्टिंग ब्लड लेवल 80 से 130 के बीच होना चाहिए। खाना खाने के बाद उसको पीपी बोलते हैं, पीपी ब्लड शुगर लेवल, वो 140 से 180 के बीच होना चाहिए। खाना खाने के बाद का मतलब है खाना खा लिया उसके 2 घंटे बाद यदि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो 140 से 180 के बीच होना चाहिए, यानी कि खाली पेट 80 से 130 और खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं वो 180 के बीच होना चाहिए।
डायबिटीज शरीर के किन किन भागों पर प्रभाव डालता है?
डायबिटीज तो अपने सभी अंगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जो मृत्यु का कारण बन जाते हैं, जैसे कि गुर्दे हैं, हार्ट है, ब्रेन है। तो ये जरूरी है कि डायबिटीज कंट्रोल में रहे, और ये जो मैं अपने को बता रहा हूँ कि गुर्दे हैं, हार्ट है, ब्रेन है, उसमें कोई खराब इफेक्ट ना हो, उसके लिए आपको डायबिटीज का इलाज कराना जरूरी
है।
डायबिटीज के साथ में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का भी कम ज्यादा होता रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी आपको डॉक्टर ही सलाह देंगे, और डॉक्टर की सलाह से ही आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा ले लीजिए। मैं एक बड़ी मजेदार बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसा जाने कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। मैंने मैं मोटापा की बात कर रहा हूँ ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस वजन के बाद मैं उसको मोटापा मानू। तो उसका एक बहुत छोटा सा फार्मूला है, आपको अपना हाइट जो है जान लेना है कि कितने सेंटीमीटर है। मान लीजिए आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, तो जितना भी सेंटीमीटर आपकी हाइट है उसमें 100 घटा दीजिए आप, जो जितना बचेगा उतना आपका आइडियल वेट है। मान लीजिए आपका वेट जो हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है, तो उसमें से 100 घटा देने के बाद बचता है 65। तो आपका आइडियल वेट जो है 65 किलो होना चाहिए। 2-4 किलो कम ज्यादा हो सकता है जरूर शरीर के बनावट के अनुसार, लेकिन एकदम से 10-20 किलो कम या ज्यादा होने से जरूर आपको चिंतित होना चाहिए।
डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, जिनको शुगर है और उनको चोट लगती है, तो वो चोट जल्दी हील क्यों नहीं होता?
जो शुगर वाली जो चोट है वो जल्दी हील नहीं होती, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। और ज्यादातर क्योंकि हमको पैर में चोट लगती है, क्योंकि पैरों का चलना फिरना होता है, तो जो पैर में जो चोट लगती है उसको हम लोग डायबिटिक फुट बोलते हैं। उसमें जो घाव होता है उसमें दुख की बात यह है कि पता नहीं चलता है कि मरीज को दर्द वगैरह नहीं होता है। साधारण अवस्था में यदि आपको हाथ में, पैर में या किसी भी अंग में चोट लगेगा तो दर्द होगा ना, लेकिन डायबिटिक में चोट दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसमें नस है जो है मर जाती है। नसें मर जाने के को बोलते हैं न्यूरोपैथी। उसके अलावा उसकी खून की सप्लाई कम हो जाती है, उसको बोलते हैं आर्टेरियोपैथी। तो न्यूरोपैथी और आर्टेरियोपैथी के कारण में छोटी मोटी चोट को यूजुअली व्यक्ति जो है नजरअंदाज कर देता है, और वो कालांतर में धीरे धीरे बढ़ जाता है। आप ये मान के चलिए कि हमारे पूरे विश्व के पॉपुलेशन में जो सबसे ज्यादा पैर काटने की नौबत आती है वो डायबिटिक में ही आती है। आपको अपने पैरों का रखना है, यानी ध्यान कैसा रखेंगे, घर के भीतर भी चप्पल पहन के घूमना है, डायबिटिक है तो छोटी मोटी चोट है तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, उसको समय पर उसका इलाज लेकर घाव सूखते तक उसका इलाज कराना है, और आपके डायबिटीज को दवाओं से और आपकी लाइफ स्टाइल से कंट्रोल करें।
डॉक्टर साहब, क्या किसी मरीज को इंसुलिन की भी जरूरत पड़ती है, और पड़ती है तो किन को पड़ती है?
इंसुलिन जो है वो सबसे अंतिम अस्त्र है डायबिटिक लोगों के लिए। जब भी डायबिटिक हम पहली बार डायग्नोसिस करते हैं, पहली बार निदान करते हैं, तो सबसे पहले मरीज को उसका लाइफ स्टाइल सुधारने की सलाह देते हैं कि भाई अपना वजन थोड़ा घटाइए, रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, आपका ब्लड शुगर लेवल तो जांचते रहिए। आप घर में ग्लूकोमीटर से जांच सकते हैं, आपको एक रेंज मैंने बता दिया है कि 80 से 130 खाली पेट, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद में 130 से 180 के आसपास, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा ब्लड शुगर लगभग रेंज के भीतर है। तो सबसे पहला स्टेप लाइफ स्टाइल, दूसरा स्टेप डायबिटीज के गोलियां। गोलियों में भी उसका स्टेप वाइज है, पहले एक गोली, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 गोली का, उसके बाद कॉम्बिनेशन 3 गोली का। यदि लाइफ स्टाइल और गोलियों के कॉम्बिनेशन से भी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो उन मरीजों को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। दूसरा बात, जिन बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज है या जुवेनाइल डायबिटीज है, उनको शुरू से ही इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि टाइप 1 में हमेशा इंसुलिन की जरूरत है, और टाइप 2 में शुरू में टेबलेट और बाद में इंजेक्शन की जरूरत है।
अच्छा, किसी व्यक्ति को यदि डायबिटीज है डॉक्टर साहब, तो उनके संतान पे उसका कितना प्रभाव पड़ता है?
उनकी संतान पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि माँ और बाप दोनों डायबिटिक हैं, तो बच्चे को डायबिटीज होने के 90% चांसेस रहते हैं। यदि माँ बाप में से एक है तो 25 से 50%। और ये जरूरी नहीं है, यदि डायबिटिक के जो बच्चे हैं, माँ बाप जिनके दोनों डायबिटिक हैं, उनके बच्चे भी अपने लाइफ स्टाइल का ध्यान रखते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, अपना वजन नहीं बढ़ने देते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो हो सकता है डायबिटिक टल जाए। और यदि नहीं करता है तो भी बहुत कम दवाओं से वो कंट्रोल हो सकता है। तो ये तो आपके ऊपर है कि डायबिटीज को आपके शरीर पे कितना ज़्यादा प्रभाव डालेगा। अनुवांशिकता तो है ही, लेकिन उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं लाइफ स्टाइल से, और अपना वजन न बढ़ने देने से, और खाने की आदतों में सुधार करने से।
और एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि महिलाओं और पुरुषों में क्या डायबिटीज का असर अलग अलग होता है?
हाँ, पहले हम लोग सोचते थे, हमारे टाइम में जब हम लोग MBBS करते थे, महिलाओं में डायबिटीज बहुत कम होता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जितना पुरुषों में होता है उतना ही महिलाओं में होता है। हम चिकित्सकों का यह मानना है कि महिलाओं में डायबिटीज बढ़ने का कारण उनका बहुत जल्दी वेट गेन करना है, यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद में, बच्चे के जन्म देने के बाद में, क्योंकि उनका वेट फटाफट बढ़ता है, इसलिए उनमें डायबिटीज होने का चांस है। और आजकल जो है, पहले घर में जिम था, कपड़ा धोना है, बर्तन मारना है, फर्श में झाड़ू पोछा लगाना है, इसमें महिलाओं की पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। अभी सब चीज़ के लिए मशीनें आ गई हैं, चाहे झाड़ू पोछा लगाना हो वैक्यूम क्लीनर से कर सकते हैं आप, जो है बर्तन भी मशीन से धो सकते हैं, और कपड़े धोने के लिए भी वॉशिंग मशीन है। इन सब चीज़ों के कारण में एक लाइफ स्टाइल में बदलाव आ गया है, पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं।
क्या डायबिटीज जीवन भर रहने वाली बीमारी है?
बिल्कुल, डायबिटीज आप ये मान के चलिए कि वो जीवन भर रहने वाली बीमारी है। और यदि आपको कोई दावा करता है कि मैं आपका डायबिटीज 2 दिन में दूर कर दूंगा या 1 हफ्ते में दूर कर दूंगा, तो आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा। ये जीवन भर रहने वाली बीमारी है और आपको जीवन भर सतर्कता रखना है।
इस क्षेत्र में कुछ नए शोध हो रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बढ़ता ही जा रहा है डायबिटीज।
देखिए, नए शोध के बारे में मैं एक सबसे मजेदार बात यह बताऊंगा कि डायबिटीज की जो बीमारी है उसको एक अलग कैटेगरी दे दी गई है, वो कैटेगरी है लाइफ स्टाइल डिजीज। यानी कि आपके लाइफ स्टाइल से संबंधित 2 बड़ी-बड़ी बीमारियां, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अपने लाइफ स्टाइल में सकारात्मक सुधार लाते हैं तो आप डायबिटीज को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी, इस लाइफ स्टाइल डिजीज में अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सतर्कता से चेंज करना है, और जिंदगी भर वही लाइफ स्टाइल अपनाना है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से उचित है। अब आप जैसे नए शोध की बात करें, तो नए शोध ये है कि पैंक्रियाज जो है वो उसमें इंसुलिन बनता है, वही आपके शुगर को, प्रोटीन को, आपके फैट को पचाता है और डायबिटीज नहीं बनने देता है। तो पैंक्रियाज क्योंकि डायबिटीज में ठीक से काम नहीं करता है, तो पैंक्रियाज को पुनर्जीवित करने के लिए दवाइयों पे काम चल रहा है। दूसरा बात यह कि नई नई टाइप की इंसुलिन आ गई है, इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, 24 घंटे में एक बार लगाने से भी काम करता है। दवाइयाँ भी जितनी अच्छी आ गई हैं कि उसको लॉन्ग टर्म लेने से उसमें साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। और मैंने छोटे बच्चों के लिए ओरल इंसुलिन पर भी बात चल रही है। अभी तक के ओरल इंसुलिन कोई नहीं, टेबलेट के फार्म में या कैप्सूल के फार्म में इंसुलिन नहीं दिया जा सकता है, इंसुलिन को इंजेक्शन से ही दे सकता है। तो ओरल इंसुलिन पर भी काम चल रहा है। उसके अलावा नाक में स्प्रे कर सकते हैं आप, लेकिन ये अभी ट्रायल स्टेज पे है और अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है। आप यकीन मानिए कि इंसुलिन की जो सिरिंजेस है वो इतनी इतनी सुंदर और इतनी शार्प है कि पता भी नहीं चलता डायबिटिक को कि उन्होंने अपने शरीर में इंजेक्शन लगा लिया है। डायबिटिक को कुछ कुछ चीज़ें सीखना चाहिए कि मेरे ब्लड शुगर का लेवल कैसा होना चाहिए, मेरे को इंजेक्शन खुद से कैसे लगाना चाहिए, मैं इंजेक्शन को कैसे नापूँ। उसके अलावा इंजेक्शन के पेन आते हैं जिसमें आपको नापने की भी जरूरत है। पेन में आप अपना डिग्री सेट कर दीजिए और अपने पेट पर लगा लीजिए। शुरू में डॉक्टर आपको एजुकेट करेंगे कि कैसे इसको नापना है और कैसे आपको अपने शरीर में लगाना है और कितनी बार लगाना है और किस तरह का इंसुलिन आपको काम में लेना।
डायबिटीज होने पे लोग आयुर्वेदिक दवा भी लेने लगे हैं, तो आपका क्या मानना है?
मैंने अभी आपको बताया ना कि लोग यही भ्रम में पड़ते हैं कि मैं आयुर्वेदिक दवा खाऊंगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हो सकता है आकर मेरा डायबिटीज ठीक हो जाए, या क्यों ना मैं होम्योपैथी ले लूँ या कोई जड़ी बूटी ले लूँ। आप ले सकते हैं, लेकिन सच बात तो यह है उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
जैसे करेला का
जो भी दवाएं, हमारी जो दवाएं हैं वो बाजार में किसी भी बीमारी के तभी लॉन्च होती हैं जबकि वो चार स्टेज में क्लिनिकल ट्रायल से गुजर चुकी हैं। एक मेडिसिन को बाजार में आने में लगभग 10 साल लगते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि ये दवा फलाने बीमारी में उपयोगी है। आयुर्वेद हमारा इतना पुराना ज्ञान होते हुए भी, हम आयुर्वेद के जनक होते हुए भी दुख की बात है कि इसमें हमने कोई शोध की दिशा में कोई काम नहीं किया। करेला खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, लेकिन मेन थेरेपी के रूप में नहीं। कि आपने दवाएं बंद कर दी और करेला का जूस पी रहे हैं या चिरायता का जूस पी रहे हैं या फिर जामुन खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरा शुगर कंट्रोल में रहेगा, इस बात को भूल जाइए। ये सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेगा। हाँ, आप दवा खा रहे हैं उसके साथ में ये लेने से हो सकता है आपको थोड़ी मदद
मिले, अच्छी है, पर आपको दवाई खाना। आजकल शुगर फ्री की बात चल रही है, कुछ कहते हैं लेना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हमें बताइए।
शुगर फ्री जो लोग शुगर बंद करते हैं उनमें थोड़ा सा मिठास वाली चीज लेने की जरूरत महसूस होती है, तो मैं भी अभी सलाह मानेंगे मैं दोनों का शुगर फ्री भी यूज मत करिए। एक बार आपको शुगर फ्री की आदत, मैंने बिना शुगर के चीजें खाने की और चाय पीने की आदत पड़ जाएगी तो आप उतना ही इंजॉय करेंगे जितना भी शुगर वाले इंजॉय करते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर शुगर फ्री वाले टेबलेट खाना चाहें, किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक के और ज़्यादा मात्रा में लेना हानिकारक होता है, इसलिए इसको भी बहुत ज़्यादा यूज ना करें। यदि आप शुगर फ्री यूज करते हैं तो हमेशा आपको मीठे का लालच बना रहे, तो बेहतर है कि इससे हमेशा के लिए मुक्ति पालें, शुगर फ्री भी यूज ना करें। ये मेरी सलाह है, अपनी एक आदत बना लीजिए कि बिना शुगर के चाय पीएंगे और जो चीज़ें मीठी हैं उसको खाने से बचेंगे।
अब चलिए आपसे एक दो सवाल बस और पूछते हैं। डायबिटीज के क्या इंडिकेटर होते हैं, किस तरह हम लक्षण पहचाने के डायबिटीज का ही है?
मैंने डायबिटीज का इंडिकेटर सबसे पहले तो बताया कि जो एक जनरल आदमी है जो डॉक्टर नहीं है उसको मालूम लगे कि मेरे को डायबिटीज हो सकती है, यानी माँ बाप में हो तो सतर्क रहे, बार बार पेशाब लगना, भूख लगना, खाना खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ना, रात को बार बार उठ के पेशाब करना, तो ये सब डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा हर एक 45 साल के बाद मैं बोलूंगा साल में कम से कम एक बार डायबिटीज का चेकअप जरूर कराएं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। और जब आप चेकअप कराते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप, तो उसमें वजन नापा जाता है, ब्लड प्रेशर नापते हैं, फास्टिंग शुगर और कोलेस्ट्रॉल नापे जाते हैं, तो ये सब नापने से आपको पता चलेगा कि किन चीज़ों में बीमारी के लक्षण पाए जा रहे हैं, तो वो आपको डॉक्टर उसके अनुसार आपको दवा देंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोटापा ना होने दें, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है और प्रेगनेंसी भी हुई है तो उनको वजन ना बढ़ने का ध्यान देना चाहिए। वजन ना बढ़ना खाना कम करने से नहीं होगा, खाना उतना ही खाएं जितना कि आप नॉर्मल में खाते हैं, अपने शरीर में एक रेगुलरिटी और एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए आप, उससे वजन नहीं बढ़ेगा और जो वजन है वो मेंटेन रहेगा। तो इस बारे में आपको थोड़ी सतर्कता, थोड़ा सा एजुकेट होने की बहुत जरूरत है।
और स्मोक और शराब ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए क्या है, आपका क्या कहना है?
मैं तो शराब पीने की कभी भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि डायबिटीज के मरीज हो चाहे डायबिटीज के मरीज ना हो तो भी शराब का सेवन हमेशा शरीर के लिए हानिकारक है। शराब एक तो केमिकल है जो अपने ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, ब्रेन को डिप्रेस करता है। पहले बोलते थे कि आप 30 ml या 1 पैग तक या 2 पैग तक ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे ना वो डायबिटिक हो, उसे क्यों लेना चाहिए? इसकी आदत भी नहीं डालना चाहिए, ना शराब और ना सिगरेट। तो देखो इन एनी फॉर्म इज वेरी इंजीरियस टू द हेल्थ एंड सेम थिंग इज विद अल्कोहल, यानी कि शराब और तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में, चाहे खैनी के रूप में, नस के रूप में, गुड़ाखो के रूप में या फिर पान वगैरह में लेना शरीर को बहुत ही नुकसानदायक है।
तो आज डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें हासिल हुई। हम आशा करते हैं कि हम एक बार फिर मिलेंगे आपसे और नई जानकारियों के साथ। तो डॉक्टर साहब आपको हमारे श्रोताओं की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी यदि आपको सवाल मन में कुछ सवाल है जरूर मैं उसका जवाब आपको और अर्पा रेडियो को। धन्यवाद।
सुनते रहे अर्पा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
अर्पा रेडियो द्वारा प्रसारित आरोग्य वाणी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायबिटीज के बारे में विस्तार से जानकारी डॉक्टर सुजान अग्रवाल से, जिनसे बातचीत कर रही थी श्रीमती संगीता अग्रवाल।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।